ओम शांति।
ओम शांति।
डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर एक, सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या दो चार घंटे? कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो, क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्नों में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या यह कहेंगे टाइपिस्ट हूँ या इंजीनियर हूँ या बिजनेसमैन हूँ? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है? अगर सदा मन बुद्धि से बिजी है तो माया चित हो ही है, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। उसको समय ही नहीं, आपको समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देखकर के आने वाला स्वतः ही वापस चला जाएगा, तो माया जीत हो गई ना। मन बुद्धि को फ्री रखना माना
माया का
आह्वान करना। तो क्या कह रहे बाबा? सदा अपने को विश्व कल्याण, विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्मा अनुभव करते हो। कल का वरदान क्या था?
सर्वशक्ति विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई।
मैं कौन सी आत्मा हूँ? विश्व कल्याण के लिए अवतरित आत्मा हूँ। हर संकल्प और हर बोल में विश्व कल्याण समाया हुआ है। ऐसी चैतन्य लाइट हाउस आत्मा जो कि संसार की आत्माओं के हर कदम में, हर उनके रास्तों में उनको प्रकाश दे, उनको रास्ता बताए। ऐसी चैतन्य लाइट हाउस आत्मा, जैसे वो लाइट से एक रंग निकलती है, वैसे तुम चैतन्य लाइट हाउस से सर्व शक्तियों की लाइट निकलती है, जिससे अनेक आत्माओं का मार्गदर्शन तुम कर सकते हो। तो मैं आत्मा कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याण के लिए ही इस तन में आई हूँ। मैं अवतार हूँ, अवतरित आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई। तो वो जो अवतार है उसे कभी अपना कार्य भूलता नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। अवतार को अभी अपना कार्य कभी नहीं भूलता। अवतार को कभी किसी में मोह नहीं होता। श्री कृष्ण का दिखाया है, गोकुल में रहा, पर जब जाने का समय आया तो बाद में पीछे मुड़ के देखा? कभी देखा ही नहीं। एक बार निकल गया तो निकल गया वहां से। जब वहां था तो वहां का कार्य, आगे बढ़ा तो वहां का कार्य। अवतार को निरंतर यह स्मृति है वो किस लिए आया है। उसे पता है कि मैं विश्व कल्याण करने के लिए आया। श्री राम का दिखा रहा है कि राम को निरंतर पता है वो किस लिए आया है। तो अवतार को अपना कार्य कभी भूलता नहीं है। तो हम सब कौन है? विश्व कल्याण का। किस लिए अवतीर्ण हुए है इस स्तन में? विश्व कल्याण के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये कहेंगे टाइपिस्ट हूं या इंजीनियर हूं या बिजनेसमैन हूं? क्या कहोगे? ये तो सब निमित्त मात्र है केवल। बाकी जो भी सेवा है हमारी, केवल निमित्त मात्र है। मुख्य सेवा तो है सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की हो। यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की, क्योंकि विश्व कल्याण बहुत बड़ा कार्य है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली तो नहीं रहती? अगर खाली है अगर बिजी है तो क्या हो जाएगा, माया जीत, अगर खाली है तो जैसे कि माया का आह्वान कर रहे थे। तो वर्तमान समय की विशेष माया है कौन सी, बहुत सारी है, स्पेशल स्वरूप ऑफ माया कौन सी माया है, व्यर्थ संकल्प और
समय,
व्यर्थ समय और व्यर्थ ख्यालत,
संसाधनों के आकर्षण,
संसाधनों के आकर्षण,
व्यर्थ संग,
व्यर्थ संग
और
टीवी, टीवी तो छोड़ो, मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट अंतरजाल,
सारे शब्द हैं,
वेबसाइट, वेब जाल होता है ना, वेब, तो ये अंतरजाल बाह्य जाल फंसा देता है उससे, वो भी एक एडिक्शन है, उससे फंसने के बाद निकलना मुश्किल है। तो वर्तमान समय की विशेष माया क्या क्या बताया, व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, संसाधनों के आकर्षण और टीवी, सीरियल, मोबाइल,
नींद,
नींद नींद भी है। हवा कहते हैं व्यर्थ सोचना, संकल्प व्यर्थ बोलना, बोल व्यर्थ समय गवाना, टाइम वेस्ट। तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, टाटा, बिरला, मित्तल, अदानी, कौन है तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी कमाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी कमाई कर सकता है, कितना दिन में,
तो कदम में कदम,
एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है,
कदम में,
हर कदम में पदम है,
1 सेकंड में 15,000
कितना, 1 सेकंड में
15,000
किसका, तो बाबा कहते सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। चाहे कितना भी बड़ा किसका व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, फिर भी कमाई कितनी करेगा, 1 दिन में 1 करोड़, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है, किसी ने कहा अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना, तो इतने बड़े हो ना, जब कोई बिजी होता है तो और कहां बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती, तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकती है नहीं, तो माया जीत हो गए ना, माया आवे और उसको भगाओ, अभी वह समय गया, अभी सदा बिजी रहो। किसमें बिजी रहेंगे, विश्व कल्याण में, कैसे, मनसा वचा कर्मणा, क्या सकाश देते रहेंगे, और फिर कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन यह है कि बिजी रहो, अपनी दिनचर्या को ऐसी सेट कर दो कि उसमें कुछ व्यर्थ के लिए समय ही ना हो। स्लोगन लिखा रहता है कहीं, अपने विचारों को इतना महान बना दो कि, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना हो। तो सबसे सहज साधन है बिजी रहने का, इससे एक तो मायाचित बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना, तो और क्या चाहिए, खुशी चाहिए ना, तो बिजी रहने से कभी भी ना माया आएगी ना ही खुशी जाएगी। बाप दादा को बच्चों को देख के खुशी होती है। फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर आएंगे। फर्स्ट एक होता है या बहुत होता है, फर्स्ट डिवीजन में आएंगे ना, हिम्मत अच्छी है इसलिए एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। ऐसे अनुभव करते हो ना, अभी किसी ने बीच से कहा है गोली की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा खुश है इसे। आजकल तो गोली की स्पीड कुछ नहीं है, 93 की मुरली,
लाइट
हाँ,
लाइट की स्पीड,
लाइट की सुपरसोनिक पराध्वनिक रॉकेट तेज चलता है ना, रॉकेट से भी तेज। सोल रूप में स्थित होना अर्थात तेज होना, आत्माभिमानी स्थिति ही। कल क्या कहा था? आत्माभिमानी ही अविनाशी अभिमान है सबके। कल की मुरली का सबसे पावरफुल महावाक्य है आत्माभिमानी ही अविनाशी अभिमान है, शरीर तो विनाशी है। तो बाबा क्या कहते हैं? सोल रूप में स्थित होना अर्थात तेज होना। शरीर से सारा अभ्यास ही शरीर से डिटैच होने का है। शरीर अलग, मैं अलग, जैसे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है ऐसा अनुभव, वो उधर मैं इधर, ऐसी एक अनुभूति। फास्ट जाना है ना, सेवाएं तो भिन्न भिन्न तरीके से कर ही रहे हो, लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करने चाहिए। ये मुरली 93 की, संडे मुरली चली थी 98 की, उसमें कहा था ना बाबा ने भारतवासियों को और विदेशियों को, भारतवासी वर्गीकरण की सेवा कर रहे बाबा खुश है, और विदेशी रिट्रीट और डायलॉग कर रहे, दोनों सेवाएं बाबा को पसंद है। इन्वेंशन निकालो, जगदीश भाई को याद किया था
ये वर्गीकरण।
तो यहाँ बाबा बोल रहे 93 में कि ये करो, और 93-8 में बोला कर लिया, अभी अच्छा किया। लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करने चाहिए। भट्टी के 7 दिन के भट्टी में बिठा हो किसको, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं
है,
स्वच्छ करने के लिए 7 दिन की भट्टी में बिठा किसको, ब्राह्मणों को, बाहर वालों को नहीं, स्वयं स्वयं को 7 दिन की भट्टी में बिठाओ। सभी जगह अनुभव करो, सिर्फ सिर्फ सुन के नहीं जाए, अटेंशन यह रखो अनुभव करके जाए, केवल कोर्स कराते देना नहीं, कोर्स में ज्यादा से ज्यादा अनुभव फोर्स कर देना है। अनुभव जैसे आत्मा का अगर चैप्टर, तो खाली एक है, खाली सुना देना आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, क्या कार्य करती है, चित्र पर समझा देना, ये एक हो गया। पर दूसरा है उसको अनुभव कराना कि तुम आत्मा हो। कोर्स कराते कराते ही योग कराना चालू कर देना वहीं पर, नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले कोर्स पूरा होता है फिर योग का उसको कमेंट्री देते हैं, वैसे नहीं, उसी दिन फर्स्ट डे ही उसको वहीं अनुभव कराना कि तुम आत्मा, और पहले दिन ही उसे ये कार्य दे देना कि सबको आत्मा देखो। कोर्स और अनुभव साथ साथ, दोनों दोनों चीजें। कोई अगर 5 मिनट के लिए भी आ जाए कोई बड़ा ग्रुप, तो उनको वहीं पर केवल अनुभव करा देना कि सब आत्मा है और इस देह से अलग है, ये सबसे पावरफुल सेवा है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ सुन के नहीं जाए, अटेंशन यह रखो अनुभव करके जाए। जैसे हमें यह रहता है कि सबको पता नहीं सब कुछ सुना दिया जाए 1 घंटे में, पर यह कम रहता है कि सबको अनुभव करा दिया जाए कि आत्मा है। आत्मा के बारे में हम सब कुछ सुनाना चाहते हैं, पर आत्मा है ये अनुभव कराना कम चाहते। हमारे पास आत्मा का बहुत सारा ज्ञान है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, पुनर्जन्म के बारे में हम बताना चाहते हैं, आत्मा पशु योनि में नहीं जाते वो हम बताना चाहते हैं, उसके हमारे पास तर्क वितर्क और सब कुछ है, पर क्या हम ये अनुभव कराना चाहते कि तुम आत्मा हो और इस देह से भिन्न हो, इस देह से अलग हो, इस देह से डिटैच हो? क्योंकि आत्मा जैसे ही शरीर से डिटैच होती है उसमें पावर बढ़ जाती है, जैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित होती है वो ऑटोमेटिक शांत हो जाती है, से कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं अनुभव करके जाए कोई भी आए तो। अच्छा, सभी क्या याद रखेंगे, कौन हूं? ज्ञान का पहला चैप्टर क्या है हमारा, आप कौन हो। 7 डेज कोर्स में सबसे पहला चैप्टर क्या है, आप कौन हो, और अंतिम चैप्टर क्या है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो। ये पहला चैप्टर है आप कौन हो, लास्ट चैप्टर भी वही है आप कौन हो। पहला चैप्टर है मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। लास्ट चैप्टर है मैं कौन सी आत्मा हूँ, बस इसमें स्थित हो जाना। फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर वही है। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, कोई होते हैं जो एक ही क्लास में कितना समय तक पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ तो समय का लास्ट पार्ट चालू है और अभी तक वो पार्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं कौन हूं, तो इसको क्या कहेंगे, होशियार स्टूडेंट कहेंगे कौन हो, इसको ढूंढना है। जो सोच रहा है, जो बोल रहा है और जो कर रहा है, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं और क्या सोच रहा हूं और कर रहा हूं, ये करने वाला सब कौन है, इसकी क्वालिटी क्या है। अभी तक वही है नीचे वाला, कोई जानबूझ के अपने आप को नीचे नहीं रखना चाहेगा। अगर पता चल गया, अगर वो निरीक्षण करेगा कि मेरे संकल्प ऐसे और बोल ऐसे और कर्म ऐसे, और उसको दिखे कि ये तीनों ही नीचे है, पर वो दिखता नहीं है, ये दिखे, चेकिंग, अटेंशन, निरीक्षण और देखना स्वयं को, इसके लिए थर्ड पर्सन, थोड़ा सा डिटैच होके खुद को ही देखना। साक्षी होकर, एक होता है बाबा ने कहा साक्षी होकर सबको देखो, पर एक है साक्षी होकर खुद को ही देखना, स्वयं स्वयं को देखना, मैं कौन हूं। तो कौन हो, चलते फिरते अपना यही ऑक्यूपेशन याद रखना कि क्या हूं, हर समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं, ये याद रखो। अगर ये स्मरण है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो ऐसा कोई कर्तव्य मैं कर रहा हूं जो कि विश्व कल्याण के विपरीत है। अगर हमने किसी को दुख दिया तो हमको ही वापस हमारा ही काम बढ़ जाएगा,
क्योंकि
हमारे काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको ही फिर उसका दुख भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण हमको ही करना है, तो हम कैसे किसी को दुख दे सकते हैं, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से, चाहे कर्म से। तो बार बार निरंतर यह स्मृति कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं नहीं केवल, कौन सी आत्मा हूं, और जो आत्मा हूं वो किसने कहा मैं हूं, ये स्मरण। तो सभी क्या याद रखेंगे, कौन हूं, संकल्प कैसे है, बोल कैसे है और कर्म कैसे है, ये तीनों की चेकिंग। जो संकल्प मन में आ रहे और जा रहे हैं, क्या उसमें विश्व कल्याण कहीं है, जो बोल बोले जा रहे हैं उसमें कहीं विश्व कल्याण है। कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी ना, किसी को ये कहना कि पागल हो, क्या इस बोल में विश्व कल्याण समाया हुआ है, तुम पागल हो किसी को बोलना, तुम तो मूर्ख हो, ये तो तुमसे नहीं होगा। जैसे वो एक कहानी दिखाते हैं ना कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सन्यासी, वृद्ध, फकीर राजपथ पर खड़ा हुआ है, उधर से राजा की सवारी आ रही है। सबसे पहले आगे चलने वाले होते हैं पैदल सैनिक, मार्ग को निर्विघ्न करने वाले, वो उसको धक्का देते हैं जोर से, बूढ़े फकीर को, सन्यासी को, साधु को, जो कि अंधा होते हैं, उसको कहते हैं अरे मूर्ख हटो बाजू से, उसको धक्का देते हैं और कहते हैं मूर्ख हटो बाजू से, देख नहीं रहे हो राजा की सवारी आ रही है, ऐसा उसको कहते हैं। तो वो हटता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है और कहता है यही कारण है, ऐसा एक शब्द कहता है। ये शायद कहानी राजा विक्रमादित्य की है, शायद राजा विक्रमादित्य है, मुझे बराबर से याद नहीं किसकी है। उसके बाद में घोड़सवार आते हैं, घोड़सवार उसको धक्का तो नहीं देते, ना ही उसको कुछ कहते। जैसे जो पैदल वाले थे उन्होंने उसको धक्का दिया, उन्होंने उसको मूर्ख कहा और उसको कहा कि हटो यहां से। जो घोड़सवार आते हैं वो कहते हैं रास्ते से हट जाओ, राजा की सवारी आ रही। तो वो कहता है यही कारण है और वही खड़ा रहता है, हटता नहीं है। फिर उसके बाद में मंत्री आता है, मंत्री उसको बिना कुछ कहे ही बाजू से निकल जाता है, कुछ कहता नहीं है, बिना कुछ कहे ही बाजू से निकल जाता है। और फिर लास्ट में राजा की सवारी आती है, तो राजा अपने रथ से उठ के उसके चरणों में गिर जाता है। तो वो कहता है यही कारण है, क्या राजा आ गया है? तो बाकी जो बाकी लोग थे, फिर सवारी आगे बढ़ जाती, बाकी लोग उससे पूछते हैं कि तुम जो ये हंस रहे थे और कह रहे थे यही कारण है, यही कारण है, ये क्या था? तो वो कहता है कि जिसका जैसा आचरण है उस आचरण के वजह से ही वो है जो है। ये राजा विक्रमादित्य की कहानी है। वो राजा क्यों है? क्योंकि उसे पता है वो कौन है सामने। वो सैनिक क्यों थे जो पैदल चलने वाले थे? क्योंकि उनका आचरण ही वैसा है। वो घोड़सवार क्यों है? क्योंकि उन्होंने फिर भी कहा। वो मंत्री क्यों है? उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस निकल गया बाजू से। पर जो राजा था वो सर्व महान था उनमें से, उसने कुछ कहा नहीं, सीधा उसके चरणों में जाके गिरा, क्योंकि उसे पता है ये कौन है। तो जिसका वो पूछते हैं जब उससे कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा, तो कहता यही कारण है कि जिसका जो आचरण है उसी के आधार से ये निश्चित होता है कि वो कौन है। तो जो महान आत्माएं हैं उनके बोल भी महान, उनके संकल्प, संकल्प बोल और कर्म तीनों ही महान होंगे। तो मैं कौन, इसका निरीक्षण करते रहना बार बार, मैं कौन। अगर मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो क्या मेरे सारे कर्म वैसे ही है विश्व कल्याण के जैसे? क्या मेरी सोच विश्व कल्याणकारी है या नहीं है? ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है, पर करनी है सबको। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्मा समझते हो। अगर इस कल्याण कितना देर बिजी रहते हो, 2-4 घंटे या सदा? कितना भी स्थूल कार्य हो लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। और वाइब्रेशन फैलाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम जो भी संकल्प करते हैं वो सूक्ष्म में दूसरी आत्माओं तक पहुंचते हैं। अगर कोई दूसरी आत्मा है और मैं यहां हूं, अगर मेरे मन में उस आत्मा के प्रति निरंतर निगेटिव संकल्प है, परंतु मैं मुख से कुछ नहीं बोल रहा हूं, न ही कर्म में ऐसा दिखा रहा हूं, परंतु फिर भी वो जो कमरा है, वो जो वातावरण है, उसमें एक निगेटिविटी होगी उस वातावरण में। हम किसी के प्रति बदले की भावना है सूक्ष्म में, हम उससे कह नहीं रहे, ना ही कुछ ऐसा कर्म भी कर रहे, परंतु निरंतर वो भावना बनी है। तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेंगे और उस आत्मा को हमारे प्रति कभी भी पॉजिटिव होने नहीं देंगे। हमारे निगेटिव संकल्प चल रहे, हम सोच रहे ये तो ऐसी है, ये तो पुरुषार्थ नहीं करती है, ये आत्मा ऐसी है, ना तो अमृत वेला है इसका, ना तो योग है, ना तो कोई सेवा भी ढंग की है, हमारे ऐसे संकल्प है। और शायद होगा भी वैसे, जहां उसको इंटरेस्ट ही नहीं है सेवा करने में, पर हम ऐसा सोच रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, हम स्टैंप लगा रहे हैं। इसके लिए तो बाबा कभी किसी को कहता नहीं, बाबा को क्या पता नहीं कौन कहां बैठा है, कौन जो आ रहे हैं उनका कितना पुरुषार्थ है, पर भगवान स्वयं कभी नहीं कहता है। क्योंकि अगर वो बाबा से, कई लोग हिस्ट्री हॉल में बाबा ने 5-5, 10-10 मिनट पर्सनल मुलाकात किया है, कई विदेशियों ने जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया बाद में। जब बाप उनसे मिल रहा था तो क्या उसको पता नहीं था ये छोड़ने वाला है? पता था ना उसको कि ये तो छोड़ के जाने वाला है, ये ट्रेटर बनने वाला है, या मेरे विरोध में जाने वाला है, यज्ञ के विरोध में जाने वाला है आगे चलकर। फिर भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट बात किया है बाप ने, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए उन आत्माओं, सब कुछ पता रहते भी उसके बाद भी। तो ऐसा उसका काम है। तो सदा ये याद रखो, ये नहीं याद रखो मैं कौन हूं, टाइपिस्ट, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। मधुबन में रहते हुए भी, यहां भी रहते या बाहर रहते हुए भी, हमारा मुख्य कर्तव्य है शुक्र है। यही सबसे बड़ी सेवा है। बाकी ये बाकी सेवा करते करते बहुत अगर सफलता मिल रही है तो वो सफलता भी हमको ज्यादा प्रभावित ना करे, क्योंकि हमारा कार्य वो है नहीं, हमारा कार्य कुछ है। बाबा ने कभी कहा है कि तुम्हारी एक ही सेवा है, ज्ञान सूर्य से शक्तियां लेकर विश्व की आत्माओं को शक्तियां देना, यही एकमात्र सेवा है, बाकी तो केवल निमित्त मात्र है। बाकी तो अपने आप होगा, वो उसका यज्ञ है, वो चलते ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा किसी चीज की लालच की भी जरूरत नहीं है, सफलता की लालच इसमें ये वो, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य मन से है, वाइब्रेशंस, वही सबसे बड़ा कार्य है। तो इस संसार में सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हम हैं। अगर स्वयं को बिजी रखेंगे तो स्वतः ही मायाजीत बन जाएंगे। तो स्वतः बिजी रखने का अभ्यास करने, और यहाँ लास्ट में क्या कहा कि अटेंशन रखो, अनुभव करके जाए, कोई आए हमारे पास और बिना अनुभव करके ना जाए। हमने कुछ बोला नहीं परंतु एक वाइब्रेशन भी दे दिया, या उसको केवल आत्मा देख लिया तो शायद कुछ तो उसमें चला जाएगा, बीज तो डाल दिया, भले वो ज्ञान में आए ना आए, पर वो बीज हमने डाल दिया आत्मा देखने का, और उसको शांति की करंट देते हो। बाबा ने कहा जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट मिलती है जैसी आत्मा को। हमने केवल एक सेकंड के लिए आत्मा देखा, वो चली गई, पर वो बीज डाल दिया है, 5 साल 10 साल के बाद कभी ना कभी तो टचिंग उसको होगा ही। दादी ने कहा ना उस दिन, बस ऐसे कहा ना, टचिंग, टच हो जाए आत्मा, वही हमारी सेवा है। 100 का ग्रुप आया है, ग्रुप आया है बहुत बड़ा, हमने केवल ऐसा कुछ कह दिया कि उसको बस टच हो जाए, उन 100 में से 1 को भी टच हो गया तो भी ठीक है, बस ऐसी सेवा करनी। तो सदा याद रखो, हर समय मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं जो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं। अच्छा, ओम शांति।